आर्या और शिवी की एक अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। आर्या ने जबरदस्ती शिवी की लंदन जाने की टिकट बुक करा दी और वो उसे लेकर उसके घर जाने लगा। पहले तो शिवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोग बाहर आ गए तो शिवी ने लोगों के सामने उसे कुछ नहीं कहा। वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। आर्या ने नीचे आने के बाद कैब हायर की और शिवी का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाने लगा। मैं तुम्हारे साथ घर चल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस लंदन जाऊँगी। आई डोंट वॉन्ट कि यहाँ कोई सीन क्रिएट हो, लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, शिवी ने धीमी और सख्त आवाज़ में कहा। वो तो घर जाने के बाद पता चल ही जाएगा नंदिनी, लेट्स गो होम, आर्या ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो घर आने का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ जिम और नंदिनी मुंबई पहुंच चुके थे। वो दोनों जिम के मुंबई वाले घर में थे। आने के बाद जेटलैग होने की वजह से नंदिनी अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी, तो वहीं आते ही जिम काम पर लग गया था। मैं नंदिनी को यहाँ तक तो ले आया, पर उसे शिवी के पास भी भेजना होगा। मैं डायरेक्ट उसे सब नहीं बता सकता, कोई ना कोई आइडिया लगाकर उसे आज ही शिवी के पास भेजना होगा। जिम चहलकदमी करते हुए खुद से बातें कर रहा था, तभी नंदिनी पानी लेने आई और उसने उसकी सारी बातें सुन ली। क्या कुछ हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं जिम? मैंने आपके मुंह से शिवी का नाम सुना, नंदिनी ने उसके पास आकर पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आई डोंट नो तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो, पर मैंने कभी नील और शिवी में फ़र्क नहीं किया। वो अभी इंडिया में है, तुम्हें कॉल करके पूछना चाहिए, बोलते हुए जिम ने नंदिनी के दोनों कंधों को प्यार से पकड़ा। उसकी बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिम को शिवी की फ़िक्र करते देख नंदिनी को अच्छा लग रहा था। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, वो अकेली नहीं है, आर्या के साथ है। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी पसंद को इतना पसंद कर पाएगी। आई मीन, इनकी इंगेजमेंट हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना आजकल की जनरेशन कितनी फास्ट होती है, ज़रूर दोनों प्री वेडिंग मून के लिए आए होंगे, ऐसे में मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। नंदिनी के जवाब ने जिम की उम्मीदों पर पानी डाल दिया। उसने गहरी सांस लेकर थोड़ी और फिर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे पास एक प्रपोजल है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जिम के गले में अपने दोनों हाथ डाले और प्यार से कहा, माय डियर हस्बैंड, हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और आप आते ही फिर से काम पर लग गए, थोड़ा टाइम खुद को भी दीजिए। खुद को टाइम दूंगा और तुम्हें भी, लेकिन इंडिया में नहीं, हम कहीं और घूमने चलेंगे। नंदिनी, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना चाहता, तुम जानती हो मेरे यहाँ की मेमोरीज़ कुछ खास अच्छी नहीं है। हाँ, तुम्हें ये कहने जा रहा था कि शिव अय्यर का घर तुम्हारे नाम है, उसे सज़ा हो चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम एक बार घर को देखाओ, हम उसे रेनोवेट कराकर सेल पर लगा देंगे। जिम कैसे भी करके नंदिनी को शिवी के पास भेजना चाहता था, उसे पता था कि शिवी अपने पुराने घर में ही रह रही है। शिव का नाम आते ही नंदिनी का चेहरा उतर गया। उसने बुझी आवाज़ में कहा, मुझे उस घर से पैसे नहीं चाहिए, एंड वन मोर थिंग, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मुझे कभी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिवी आर्या के साथ सेटल हो जाएगी तो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेगी, मुझे शिव और उससे जुड़ी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो घर अकेला उसका नहीं था, तुमने भी उसे अपने प्यार और मेहनत से सींचा है, मैं कोई बहस नहीं चाहता, तुम वहाँ जा रही हो और आज ही वो काम निपटा कराओगी। इस बार जिम के शब्द सख्त थे, वो नंदिनी के मुँह से बार बार ना सुनकर चिढ़ गया था। ठीक है, नंदिनी ने मायूस होकर कहा। उसकी बात सुनकर जिम मुस्कुराया, वो दूसरी तरफ गया और घर की चाबियां नंदिनी के हाथ में रख दी। नंदिनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो, मुझे पता था इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जिम ने सामान्य तरीके से कहा। नंदिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो काफ़ी थकी हुई थी। उसके बावजूद जिम से नाराज़ होने की वजह से तुरंत गाड़ी लेकर अपने पुराने घर जाने के लिए निकल गई। नंदिनी घर पहुंची तब वहां कोई नहीं था। उसने घर का ताला खोला, लेकिन अंदर आने के बाद वो हैरान हुई। घर साफ सुथरा था, बाहर लगे प्लांट्स में पानी भी दिया हुआ था और घर की हालत काफ़ी हद तक ठीक थी। अजीब है, मेरी एब्सेंस में यहाँ कौन रहता होगा, मुझे ये बात जिम को बतानी होगी, नंदिनी हैरान थी। वो जिम को कॉल करती उससे पहले उसे बाहर किसी के आने की आहट हुई। नंदिनी दरवाजे के पास छुपकर खड़ी हो गई, उसे लगा कि कोई और होगा। उसने दरवाजे की ओर से देखा तो आर्या शिविता हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आ रहा था। आई टोल्ड यू नंदिनी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हारे पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है, आर्या गुस्से में खींचकर उसे अंदर लेकर आ रहा था। मैंने तुम्हें बोल दिया मेरा हाथ छोड़ो आर्या, मुझे दर्द हो रहा है, रास्ते में मैंने कुछ नहीं कहा ताकि सीन क्रिएट ना हो, बट अब मेरा हाथ छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। शिवी अंदर आने के बजाय वहीं रुक गई, उसने झुककर आर्या के हाथ पर बाइट किया, जिससे मजबूरन आर्या को उसका हाथ छोड़ना पड़ा। आह, आर्या जोर से चिल्लाया और अपना हाथ हवा में छटकने लगा। पागल हो गई हो क्या, ये क्या हरकत थी, तुमने मुझे बाइट किया, आर्या अजीब नजरों से शिवी की तरफ देख रहा था। हाँ तो तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, शिवी ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम जा रही हो वो भी लंदन, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ नंदिनी, चुपचाप मेरी बात मानो वरना मैं मिसेस वॉटसन को कॉल कर रहा हूँ, आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होने वाली हो। आर्या ने कहा ही था कि नंदिनी बाहर निकल कर आई। तुम्हें मुझसे जो कहना है यही कहो, इसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ तुम दोनों के बीच, और तुम इसे नंदिनी कहकर क्यों बुला रहे हो? नंदिनी ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा। उनके आते ही आर्या और शिवी दोनों डिसेंट बनकर खड़े हो गए। कुछ नहीं हुआ मम्मा, वो मैंने आपको बताया था ना कि हम दोनों घूमने आए हुए हैं, तो सोचा इसे अपना घर दिखा दूं, शिवी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा। वो आर्या के पास खिसक गई और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पास घर की चाबियां कहाँ से आई? देखो शिवी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। कोई तुम्हें जाने या ना जाने, मैं अच्छे से जानती हूँ कब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। नंदिनी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। शिवी ने उम्मीद भरी नजरों से आर्या की तरफ देखा ताकि वो उसकी मदद कर सके। नंदिनी ने उसके इशारे को समझा और कहा, अब इसे इशारा करने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हें लंदन क्यों भेज रहा है, इस बात का रीजन जानना है मुझे। मम्मा ये बहुत लंबी कहानी है, हम बैठकर बात करते हैं। शिवी आगे आकर नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी, लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ छटक दिया। वो वहीं पर खड़ी थी। लंबी कहानी है तो सुनाओ मुझे, मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए शिवी, सच सुनना है मुझे, नंदिनी ने एक बार फिर पूछा। शिवी चुप हो गई तो आर्या ने कहा, हम दोनों यहाँ घूमने के लिए ही आए थे और ये सच बोल रही है। एक्चुअली इसे यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं हो रहा, तो मैं जिद कर रहा था कि वापस चली जाए, लेकिन इसे मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है।
रियली आर्या, पिछली बार भी तुमने इसका साथ देने के लिए झूठ बोला, तब जिम मेरे साथ था इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई, नंदिनी ने आर्या को जवाब दिया और फिर शिवी के पास आकर कहा, मैंने तुम्हें सच बोलने का मौका दिया था लेकिन तुमने उसे गवा दिया। मैंने सिद्धांत के मैसेज को पढ़ा था, शिव की हेयरिंग होने वाली थी और वो तुम्हें यहाँ बुला रहा था, इसलिए तुम यहाँ आई हो ना। मुझे नहीं पता था तुम इस झमेले में अपने होने वाले पति को भी घसीट लोगी। नंदिनी की बातों से साफ था कि उसे शिवी के वहाँ आने का कारण पता था। उसकी बात सुनकर आर्या ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। नंदिनी के सामने अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा मिसेज वॉटसन, एक्चुअली हम दोनों ने सगाई तोड़ दी है। आर्या ने ये बात काफी सामान्य तरीके से बताई थी। नंदिनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। शिवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नंदिनी ने शिवी की अंगुली की तरफ देखा तो उसमें सगाई की अंगूठी नहीं थी। इसका कारण क्या है, नंदिनी ने पूछा। इसका सीधा सीधा कारण है कि आपके एक्स हस्बैंड ने 3 साल पहले जिस पर हमला किया था वो कोई और नहीं, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड थी। उनकी वजह से एली की जान चली गई। मैंने शिवी के सामने भी ऑप्शन रखा था कि वो मुझे ही अपने पापा में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले, आर्या बोल रहा था तभी नंदिनी ने उसकी बात के बीच में कहा। और इसने अपने पापा को सिलेक्ट किया, हमेशा की तरह इसने अपने पापा को सिलेक्ट किया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे और आवाज में गुस्सा। वो शिवी के पास आई और उसके दोनों कंधों को पकड़कर चिल्लाकर कहा, क्यों शिवी, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मेरा ना सही, अपनी लाइफ के बारे में तो सोचो। अब कोई रास्ता नहीं है मिसेज वॉटसन, इसने अपना रास्ता खुद चूज किया है, ये वहां से वापस नहीं आ सकती, इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इसे यहां से भेजना चाहता हूं क्योंकि इसकी जान को खतरा है, ये जो भी कर रही है इस वजह से बात इसकी जान पर आ गई है। थैंक गॉड आप यहां आ गई, अब आप ही समझाइए इसे कि ये बचपना ना करें। आर्या ने पूरी बात नंदिनी के सामने रख दी ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। शिवी अपना सामान पैक करो, नंदिनी ने जोर से चिल्लाकर कहा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा, आप बार बार मुझे पापा से अलग नहीं कर सकती, शिवी बोलते हुए रोने लगी। नंदिनी के सामने वो अक्सर कमजोर पड़ जाती थी। मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, जो कहा है वो करो वरना अच्छा नहीं होगा, नंदिनी ने गुस्से में कहा। उसने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचने लगी। शिवी रुकने के लिए पूरा जोर लगा रही थी लेकिन नंदिनी काफी गुस्से में थी इसलिए उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो उसे बुरी तरह खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। आर्या को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो दौड़कर उसके पास गया और नंदिनी का हाथ शिवी के हाथ से छुड़ाने लगा। इसका हाथ छोड़िए मिसेज वॉटसन, इसे दर्द हो रहा है, मैंने भी इतना टाइटली नहीं पकड़ा था। शिवी की आंखों में आंसू देखकर आर्या की आंखें भी नम थीं। मेरी ना सही, इसकी तो फिक्र कर लो, पर नहीं, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम अपने पापा की तरह हो, बिल्कुल सेल्फिश, जो हमेशा अपने बारे में सोचती है, नंदिनी ने कहा। आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको इसलिए सब बताया ताकि आप प्यार से हैंडल कर सके। अगर सब गुस्से और जोर जबरदस्ती से ही करना था तो अब तक मैं इसे लंदन छोड़कर आ चुका होता, आर्या ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसने शिवी के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम रोना बंद करो नंदिनी, तुम अकेले नहीं जाना चाहती तो हम दोनों साथ में चलेंगे, मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर लूंगा, यहाँ वो सब संभाल लेंगे। तुम लोगों को समझ में नहीं आता मुझे कहीं नहीं जाना, शिवी ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहा और आर्या का हाथ अपने हाथ से अलग कर दिया। शिवी के तेवर देखकर नंदिनी को साफ हो गया था कि अब वो किसी से रोकने से नहीं रुकने वाली थी। उसने अपना आखिरी दांव खेलते हुए कहा, फाइन नहीं जाना ना तुम्हें कहीं, तुम मत जाओ लेकिन मेरे घर से बाहर निकलो। इस घर की हालत देखकर एक बात तो साफ है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि एक दिन से ज्यादा बाहर सर्वाइव कर पाओ। मैं भी देखती हूँ रोड पर कब तक सोती हो और खाना खाने के लिए क्या भीख मांगने जाओगी। हमेशा की तरह नंदिनी गुस्से में सब भूल गई थी और शिवी को कुछ भी बोल रही थी।
वो अंदर गई और शिवी का सारा सामान पैक करके बाहर लेकर आई। उसने शिवी का लगेज उसे थमाया और कहा, आगे से मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, अब से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। नंदिनी ने अपनी तरफ से शिवी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गुस्से में शिवी भी अपना लगेज लेकर बाहर जाने लगी, जबकि आर्या अभी भी अंदर था। आप बहुत रूड थे, एक बार प्यार से समझाने की कोशिश करती तो वो जरूर समझ जाती, आर्या ने कहा। तुम्हारे लिए ये सब चीजें पहली बार हो रही होगी, मैं पिछले 3 साल से यही झेल रही हूँ। इसकी जिद और मनमानी करने की आदत, बार बार अपने पापा के पास आने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करना, मैं सच में तंग आ गई हूँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तुम भी इसकी हेल्प मत करना, एक हफ्ते रोड पर रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, नंदिनी ने सख्त शब्दों में कहा और अंदर चली गई। आर्या को नंदिनी पर काफी हैरानी हो रही थी, पर उसने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो तुरंत बाहर आया, वहीं शिवी आंखों में आंसू लिए अपने लगेज के साथ बिना किसी मंजिल के चल रही थी।